नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। ईरान की मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल के दिमोना और नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्रों के आसपास मिसाइलें दागी गई हैं। बताया जा रहा है कि हमले ईरान के बुशहर और नतांज स्थित परमाणु संयंत्रों पर अमेरिका इसराइल के हमलों के बदले में किए गए। हालांकि इसराइली अधिकारियों ने इन परमाणु केंद्रों पर किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की है। इसराइल के विदेश मंत्रालय के अनुसार हमले में बच्चों सहित 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात में रास अल खैमा के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वायु रक्षा प्रणालियों ने आने वाले खतरों को निष्क्रिय कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान 48 घंटों के भीतर होर्मुज जल डमरू मध्य को नहीं खोलता है तो ईरान के बिजली संयंत्रों पर अमेरिका बड़ा विनाशकारी हमला करेगा और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जारी चेतावनी में कहा कि अमेरिका ईरान के विभिन्न बिजली संयंत्रों को निशाना बनाएगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र पर हमले से होगी। उधर इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि ईरान ने अमेरिकी इजरायली संयुक्त ऑपरेशन रोरिंग लॉयन शुरू होने के बाद पहली बार लगभग 4000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली लंबी दूरी की मिसाइल दागी है। इजरायल ने कहा है कि ईरान वैश्विक खतरा उत्पन्न कर रहा है क्योंकि उसकी मिसाइलें अब लंदन, पेरिस या बर्लिन तक पहुंच सकती हैं। इजरायल ने दावा किया है कि ईरान ने क्षेत्र के 12 देशों पर हमले किए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन से कल टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों सहित ढांचागत केंद्रों पर हुए हमलों की निंदा की। श्री मोदी ने कहा कि ये हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की। सरकार ने राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के लिए 20% अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है। इससे कुल आवंटन 50% हो जाएगा। इसमें पीएनजी के विस्तार के लिए सुधारों के आधार पर 10% आवंटन भी शामिल है। इसमें रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी, रियायती कैंटीन और राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने बजट 2025-26 के अनुरूप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विनिर्माताओं और निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना में बड़े बदलाव किए हैं। संशोधित योजना में चौथे वर्ष बाद किस्तों में 5% अग्रिम अंशदान वापसी की जा सकती है। संतोषजनक ऋण प्रदर्शन पर चौथे वर्ष से हर वर्ष इसका 1% वापस किया जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी ने असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूचियां जारी की हैं। असम में सुश्री कृष्णा साहा दलगांव से और जीवन गोगोई सिसीबरगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने केरलम के लिए 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। केरलम की 140 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा, मतगणना 4 मई को होगी। पुदुचेरी में भाजपा ने आवंटित 10 सीटों में से 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। पुदुचेरी चुनाव के लिए अब तक कुल 135 नामांकन दाखिल किए गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने हजारों करोड़ रुपए के एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में रिलायंस एडीए समूह के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था, जिसमें 2900 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। सीबीआई के अनुसार प्राथमिकी में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, इसके प्रमोटर अनिल धीरूभाई अंबानी और अन्य अधिकारियों के नाम शामिल हैं। बिहार आज 114वां स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1912 में आज ही के दिन बिहार बंगाल से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना था। इस उपलक्ष्य में पटना के गांधी मैदान में 3 दिन तक चलने वाला राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश और विदेश में रहने वाले बिहारवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार को विश्व के पहले गणतंत्र की भूमि और गौरवशाली साम्राज्यों के साथ साथ समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं की जन्मभूमि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि भारत की विरासत में भव्यता और दिव्यता का समावेश करने वाला बिहार निरंतर प्रगति के नए अध्याय लिख रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।